तीसरा भाग नवम सर्ग का काव्य सौष्ठव या साकेत के काव्य वैशिष्ट्य की विवेचना अथवा साकेत मूलतः अविधा मूलक और वक्तव्य मूलक काव्य है या साकेत का काव्य सौंदर्य। साकेत गुप्त जी की प्रौढ़तम रचना है, भाव पक्ष एवं कला पक्ष की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपेक्षित उर्मिला जैसे नितांत अछूते प्रसंग को स्पर्श कर गुप्त जी ने उसमें प्राण भर दिया है। कवि ने उर्मिला के विरही जीवन के विभिन्न चित्र प्रस्तुत किए हैं। वह विभिन्न ऋतुओं में किस प्रकार व्यथित होती है और किस प्रकार विक्षिप्त होकर उन्माद की अवस्था में पहुंच जाती है आदि का वर्णन विस्तार से हुआ है। रीतकालीन विरह वर्णन का प्रभाव होने के कारण उर्मिला का विरह वर्णन कहीं कहीं पर हास्यास्पद हो गया है। कवि काव्य सौष्ठव की दृष्टि से जो तत्व नवम सर्ग के स्थूल कलेवर का निर्माण करने में समर्थ हैं वे निम्न हैं। पहला भाषा, दूसरा शैली, तीसरा अलंकार विधान, चौथा छंद योजना, पांचवा चित्रोपमता, छठा प्रकृत वर्णन, सातवां नाटकीयता। पहला भाषा। भाषा ही भावाभिव्यक्ति का मूलाधार है। गुप्त जी की लोकप्रियता का बहुत बड़ा कारण उनका विषय पात्र तथा युग अनुकूल भाषा ही है। साकेत ही गुप्त जी की रचनाओं की वह ऊंची मंजिल है जहां पहुंचकर कवि की भाषा संपूर्णतः भावानुगामिनी बन गई है। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, साकेत की भाषा में खड़ी बोली का अत्यंत शिष्ट और प्रौढ़ रूप मिलता है। नवम सर्ग में कवि ने व्याकरण सम्मत एवं संस्कृत की तत्सम शब्द प्रधान विशुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भाषा में सर्वत्र भावानुकूलता एवं चित्रोपमता है। यत्र तत्र लाक्षणिकता एवं प्रतीकात्मक शब्दों की योजना करके कवि ने छायावादी शैली का भी अनुसरण किया है। जैसे हा मेरे कुंजों का कूजन रोकर निराश होकर सोचा, यह चंद्रोदय सबको उड़ा रहा है धवल वसंत सा धोया, अथवा मेरा रोदन मचल रहा है कहता है कुछ गाँव। साकेतकार ने संस्कृत के अनेक शब्दों को भी खड़ी बोली की प्रकृति के नवीन सांचे में ढालने का प्रयास किया है। जैसे भ्रमरी इस मोहन मानस के सुन मादक हैं रस भाव सभी, मधु पी कर और मधांध न हो ऊर्जा बस है अब क्षेम तभी। इसमें कहीं कहीं कवि ने प्रांतीय शब्दों का प्रयोग कर भाषा में माधुर्य और प्रभाव को बढ़ा दिया है। जैसे मेरी छाती ढलक रही है मानस सफरी ललक रही है, लोचन सीमा झलक रही है आगे नहीं सहारा सखी निरख नदी की धारा। इस सर्ग में मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। जैसे वज्र सा पहाड़ अचानक टूटा, भर आया सूखा हुआ गला, भय खाऊं आंसू पिए मन मारूं फिर मरूं, न क्यों मुंह फोड़ के इत्यादि। प्रचलित कभी कभी प्रचलित रूप में अलग ढंग के मुहावरे का प्रयोग है। छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, पारंपरिक ढंग से किए गए मुहावरों का प्रयोग सरल है, विरह संग अभिसार भी। और मरण वह बन जाता है कभी की ही एक आहार भी। साकेत की भाषा विभिन्न प्रसंगों में विभिन्न पात्रों के स्वभाव रुचि आदि के सर्वथा अनुकूल ही है। देश काल की परिस्थिति के अनुसार ही साकेत के राम लक्ष्मण कैकेयी सीता आदि विभिन्न पात्र अपनी वैयक्तिक विभिन्नताएं लेकर काव्य के मंच पर अवतरित होते दिखाई पड़ते हैं। नवे सर्ग में उर्मिला की विरह वेदना के प्रभाववश भाषा में भी एक प्रकार की अस्थिरता व्यग्रता एवं वेदना भाव का आभास मिलता है। भाषा में लाक्षणिकता एवं प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग हुआ है। अरि सुर अभिजा लौट जा, अपने संग सहेज, तू है फूलों में पली यह कांटों की सेज। यहाँ कांटों की सेज का प्रयोग विरह जन्य संताप के लिए हुआ है। इस प्रकार के लाक्षणिक और प्रतीकात्मक प्रयोगों से साकेत में सरसता, सुंदरता, सशक्तता और सजीवता आ गई है। चित्रोपमता की दृष्टि से कई ऐसे स्थल हैं जो मस्तिष्क पर भावों को मूर्तिमान कर बैठे हैं। नवम सर्ग के अंत में कवि विरहिणी वाला को चिता में जलता हुआ दिखाकर उसके प्रेमी विरही का आगमन दिखाता है। विरहिणी की चिता की भस्म पर विरही प्रेमी के अश्रु गिरते हैं, जिससे अंकुर उठता है, उसमें पत्ते आ जाते हैं और एक फूल भी निकल आता है। उस फूल में विरही को अपनी प्रिया झांकती हुई दिखाई देती है। विरहिणी की चिता की भस्म से उगी हुई लता विरही से लिपट जाती है। ज्यों ही अश्रु चिता पर आया, उग अंकुर पत्तों से आया, फूल वही बदनाकृति लाया, लिपटी लतिका फूली, लाना लाना सखितूली। साकेत में इस प्रकार के अनुपम शब्द चित्रों की भरमार हो गई है। कवि का शब्द भंडार पर इतना व्यापक अधिकार है कि चित्रोपमता स्वभावतः ही आ गई है। साकेत में स्थान स्थान पर स्वरों की एकता, समता एवं वर्णन साम्य पर अधिक जोर दिया गया है। शब्द चयन इस प्रकार हुआ है कि सस्वरता स्वयं ही आ गई है। काली कोयल बोली, होली होली होली, हंसकर लाल लाल होठों पर हरियाली हिल डाली, फूटा यौवन फाड़ प्रकृति की पीली पीली चोली, होली होली होली। कई स्थलों पर काव्योचित लालित्य की सरस स्वाभाविक माधुरी दृष्टिगोचर होती है। यही वाटिका थी, यही थी मही, यही चंद्र था, चांदनी थी यही। साकेत में शब्द शक्तियों के प्रायः सभी भेद प्रभेदों का प्रयोग हुआ है। पात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण उनके कथनों में भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। अविधा शब्द शक्ति का प्रयोग सर्वत्र दिखाई पड़ता है। अरि व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई, हटा थाल तू क्यों इसे आप लाई, वही पाक है जो बिना भूख भावे, बता किंतु तू ही उसे कौन खावे। साकेत में लक्षण का भी सफल प्रयोग हुआ है। जीवन के पहले प्रभाव में जब आँख खुली मेरी, इसमें प्रभात और आँख खुली शब्दों में मुख्यार्थ की आभा है। इसका लक्ष्यार्थ क्रमशः बचपन और समझ आई से है। उच्च कोटि के काव्यों में व्यंजना शक्ति की ही प्रधानता रही है। साकेत में व्यंजना शक्ति का प्रयोग हुआ है, जैसे भ्रमरी इस मोहन मानस के, सुन मादक हैं रसभाव सभी, मध पीकर और मदांध न हो, ऊर्जा बस है अब क्षेम तभी, पड़ जाए न पंकज बंधन में, निसी यद्यपि हैं कुछ दूर नहीं, दिन देख नहीं सकते सविशेष, किसी जन का सुख भोग कभी। भ्रमरी और मधु शब्द क्रमशः भ्रमण करने वाले कोई स्त्री तथा शराब के भी द्योतक हैं, परंतु संयोग आदि के कारण ये शब्द क्रमशः यहाँ भ्रमरी और मकरंद के बोधक हो गए हैं। फिर भी इस अर्थ का बोध होता है कि किसी भ्रमण करने वाली नारी का मधु पीकर मदांध नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो उस पर पुरुष के बंधन में पड़ जाना पड़ेगा। गुप्त जी ने साकेत की भाषा को सजाने संवारने का प्रयास नहीं किया है, किंतु अनेक स्थलों पर उसमें व्याख्यात्मक लालित्य की सरस स्वाभाविक माधुरी दृष्टिगोचर होती है। ऐसे स्थलों पर भाषा की स्वच्छता भी दर्शनीय है। यही वाटिका थी, यही थी मही, यही चंद्र था, चांदनी थी यही। साकेत में स्थल स्थल पर व्यंग मैत्री के उदाहरण मिल जाते हैं, जैसे सखनीरक नदी की धारा ढलमल 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 ढलमल, अंचल अंचल चंचल झलझल तारा। दूसरा, शैली। साकेत एक प्रबंध काव्य है, अतः उसकी शैली गीत्यात्मक थी, नाट्यात्मक न होकर प्रबंधात्मक है। प्रबंध शैली में वर्णनात्मकता को ही सर्वाधिक महत्व देना पड़ता है, क्योंकि इसमें इतवित्त विशेष का आद्यांत विस्तार रहता है। साकेत की प्रबंध शैली की प्रधान विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, प्रवाहमयता, भावावगमिता, चित्रात्मकता, सूक्ष्मता, हास्य विनोद, संवादात्मकता। सुसंगठित भाषा होने के कारण साकेत की काव्य शैली में प्रवाहमयता है, कहीं कहीं गत्यात्मकता और मंद गतिशीलता के भी दर्शन होते हैं, लेकिन शैली के भावानुगामिनी होने के कारण ही इसकी प्रबंधात्मकता में रोचकता एवं आकर्षण के सहज गुण स्वभावतः समाविष्ट हो गए हैं। इसके साथ ही दृश्य चित्र, रूप चित्रण, मुद्रा चित्रण आदि ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ कवि की सौंदर्य विधानी चित्रात्मक शैली अपनी समग्र प्रभावशीलता के साथ उभर उठी है। इस पर भी मूर्त अमूर्त भावों को एकाकार कर गुप्त जी ने अभिव्यक्ति की सूक्ष्मातिसूक्ष्म रहस्यों को प्रकट किया है। साकेत के विरह काव्य होने के कारण हास्य विनोद शैली का प्रयोग कम ही हुआ है। उर्मिला लक्ष्मण प्रेमालाप में हम इसे देख सकते हैं। नंगी पीठ बैठ कर घोड़े को उड़ाऊं कहो, किंतु डरता हूँ मैं तुम्हारे इस झूले से, रोक सकता हूँ उरुओं के बल से ही उसे, टूटे भी लगाम यदि मेरे कभी भूले से, किंतु क्या करूँगा यहाँ उत्तर में मैंने हंस और भी बढ़ाए पेंग दोनों ओर उले से, हैं कर लिपट गए थे यही प्राणेश्वर, बाहर से संकुचित भीतर से फूले से। इस हास्य विनोद शैली में संवादात्मकता वैशिष्ट्य के भी दर्शन होते हैं। इस काव्य में स्वाभाविकता, सजीवता, गतिशीलता और रसात्मकता आदि गुणों का समावेश हो जाता है। तीसरा, अलंकार विधान। अलंकार की दृष्टि से साकेत श्रेष्ठ काव्य है। इसमें अलंकारों की विविधता एवं नवनूतनता के साथ ग्रहण किया गया है। डॉक्टर नगेन ने साकेत एक अध्ययन में इस संदर्भ में लिखा है, साकेत में गुप्त जी के कवि जीवन का पूर्ण वैभव मिलता है, अतः उसका कलेवर अलंकृत है, उसका काव्य श्रीमंडित है, उसमें शकुंतला का वन सौंदर्य नहीं और वसी का नागरिक विलास है। यहाँ उनकी प्रतिभा ने कविता को नई नई श्रृंगार सामग्री से चित्र विचित्र सजाया है, इसलिए अतिशय भावपूर्ण स्थलों को छोड़कर अन्यत्र व शायद ही निरावरण मिले। सर्गों की दृष्टि से नवम सर्ग में सर्वाधिक अलंकार प्रयुक्त हुए हैं, जिन पर प्रकाश डालते हुए श्री गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश ने लिखा है, कवि ने उर्मिला को प्रकृति वेदना नहीं प्रदान की। उर्मिला प्रतिवियोग में दुखनी है, लेकिन लोक मर्यादा के भावों में जकड़ी हुई है। इसकी केंद्रिकता के भाव की अभाव की पूर्ति करने के लिए अलंकारिकता का आगमन हुआ है। साकेत में जहाँ कवि की दृष्टि केवल अलंकार पर रही है, वहाँ अर्थ क्लिष्ट हो गया है, जैसे श्लेष अलंकार का उदाहरण। उस रदंती विरहणी के रुदन रस के लेप से, और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से, वर्ण वर्ण सदैव जिनके हो विभूषण कर्ण के, क्यों न बनते कविजनों के ताम्रपत सुवर्ण के। इसमें रुदंती का प्रथम अर्थ एक जड़ी जिसके लेप से तांबा सोना बन जाता है, तथा दूसरा अर्थ विरह से उत्पन्न दुख। वर्ण का प्रथम अर्थ प्रकार तथा दूसरा अर्थ है अक्षर। विभूषण का प्रथम अर्थ आभूषण तथा दूसरा अर्थ गौरव। सुवर्ण का पहला अर्थ सोना तथा दूसरा अर्थ अक्षारूप। इस तरह इसमें श्लेष अलंकार है। उपमा, मेरी दशा हुई कुछ ऐसी, तारों पर उंगली की जैसी। रूपक अलंकार, लिखकर लोहित लेख डूब गया है दिन आहा। व्योम सिंधु सख देख तारक बुदबुद दे रहा। इसमें व्योम सिंधु तथा तारक बुदबुद में रूपक अलंकार है। मानवीकरण, सिद्ध शिलाओं के आधार ओ गौरवगिरि उच्च उदार। इसमें प्रकृति का वर्णन सचेतन रूप में होने के कारण मालवीकरण अलंकार है। विरोधाभास अलंकार, विविध राग रंजित अभिराम तू विराग साधन वनधाम। कामद होकर आप अकाम में विरोधाभास अलंकार है। चौथा, छंद योजना। छंद कविता का नैसर्गिक परिधान है। डॉक्टर नगेंद्र ने उसे साकेत की सीता के दिव्य दुकुल की भांति कविता की देह के साथ उत्पन्न हुआ माना है। साकेत की छंद योजना प्रौण है, उसका चयन प्रसंग के अनुरूप किया गया है। मात्रिक और वर्णिक दोनों प्रकार के छंदों का व्यवहार हुआ है। आर्यागीति शार्दूल विकृणित, शिखरणी मालिनी, द्युत विलंबित आदि सुंदर संस्कृतवित और दोहा सोरठा धनाक्षरी सवैया जैसे प्राचीन हिंदी छंद भी नवम सर्ग अथवा अन्य सर्गों के अंत में प्रयुक्त हुए हैं। प्रसंगानुकूल छंदों का सफल प्रयोग कवि कौशल का परिचायक है। उसमें गतिभंग या यतिभंग का कहीं नाम नहीं है। सब में सुख प्रवाह सरल है, उनमें राग की अंतरधारा सर्वत्र व्याप्त है। नवम सर्ग में विरहणी के मनोभावों में परिवर्तन के साथ ही छंदों में भी परिवर्तन हुआ है। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। दोहा, अवधशिला का उर्पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। सवैया, भ्रमरी इस मोहन मानस के सुन मादक हैं रसभाव सभी। मधु पी कर और मदांध न हो, उड़ जा बस है अब प्रेम तभी। पड़ जाए न पंकज बंधन में, निश यद्यपि है कुछ दूर अभी। दिन देख नहीं सकते सब विशेष, किसी जन का सुख भोग कभी। इसके प्रत्येक चरण में 8 सगण हैं। मदाक्रांता, दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला। 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां हैं पुतशीला। त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही। राजा योगी जय जनक वे पुत्र देही विदेही। इसके प्रत्येक चरण में 17 अक्षर हैं। कवित्त, छोड़ छोड़ फूल मत छोड़ आली देख मेरा। हाथ लगते ही यह कैसे कुम्हलाए हैं। कितना विनाश ने क्षणिक विनोद में, दुखनी लता के लाल आंसुओं से छाए हैं। किंतु नहीं चुन ले साहस खिले फूल सब, रूप गुण गंध से जो मेरे मन भाए हैं। जाए नहीं लाल लतिका ने झड़ने के लिए, गौरों के संग चढ़ने के लिए जाए हैं। यह मनहरण कवित्त है। प्रत्येक चरण में 31 अक्षर हैं और 16-15 पर्यति है। अंत में गुरु है। सोरठा, लिखकर लोहित लेख डूब गया है दिन आहा। व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। रोला, अरे एक मन रोक थाम तुझे मैंने लिया, दो नैनों ने सुख मरम खो दिया रो दिया। पांचवा, प्रकृति वर्णन। साकेत में प्रकृति की बड़ी मनोरम झांकियां अंकित की गई हैं। नवम सर्ग में ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, शिशिर, वसंत आदि का वर्णन करते हुए प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण किया गया है। कुलिस किसी पर कड़क रहे हैं, आली तो यद तड़क रहे हैं आदि पदों में कवि ने प्रकृति के उद्दीपन रूप में रूप की झांकी अंकित की है। वह कोयल जो कूंक रही थी आज हूंक भरती है, अथवा लेता है निःश्वास समीरण, या उबल सूखती है जलधारा आदि पंक्तियों में कवि ने वातावरण निर्माण के रूप में प्रकृति का चित्रण किया है। वृणी उर्मिला कभी शशक को, कभी कपोत को और कभी हंस को अपना संदेश लेकर लक्ष्मण के पास जाने का आग्रह करती है। वहाँ कवि ने दूत या दूती के रूप में भी चित्रण किया है। प्रातःकालीन लाल सूर्य जो अभी अभी मंडल पर आ रहा है, उसे देखकर उर्मिला कहती हैं कि चंचल होने पर भी किरणों का चरित्र कितना भोला है, मानो अपने चरित्र की पवित्रता का प्रमाण देने के लिए उसने लाल सूर्य रूपी गोले को हाथ में उठा लिया है। चंचल थी किरणों का चरित्र क्या ही पवित्र है भोला, देखकर साख उन्होंने उठा लिया लाल लाल वह गोला। नवम सर्ग में स्वतंत्र रूप से किए गए प्रकृति वर्णन अत्यंत हृदयग्राही हैं। इस तरह कवि ने सांस्कृतिक परंपरा का पालन करते हुए प्रकृति की मनोमुग्धकारी सुषमा अंकित की है, जिसमें विविधता है, स्वाभाविकता है और तन्मय कर देने की अपूर्ण शक्ति है। पॉइंट नंबर 6, छठा, नाटकीयता। इसमें नाटकीयता के प्रभाव से हृदय ग्राहिता बढ़ गई है। उन्मादवश उर्मिला समझती है कि उसके प्रिय अपना धर्म छोड़ अवध से पहले ही लौट आए हैं, तो वह अपने स्वामी की भर्त्सना कर देती है। होश आने पर पश्चाताप करती है। पतितनाथ है तू सदा सया, अधम उर्मिले हाय निर्दया। नियम पालती एकमात्र तू, सब अपात्र हैं और पात्र तू। मुंह दिखाएगी क्या अभी, क्या उन्हें अरी, पर ससंशया क्यों न तू मरी। उर्मिला आगे कल्पना करती है, हट सुलक्षणे रोक तू न क्यों, पतित मैं तुझे चट्टगेट तू नहीं हो। विवश लक नहीं उर्मिला हाय, किधर उर्मिला अली क्या कहा। यह सुंदर नाटकीयता है। विवश लक कहकर उर्मिला ने जिस समय रुकी उसी समय घबरा कर सखी चिल्ला उठी, नहीं उर्मिला हा, इसमें नाटकीयता संवाद पूर्ण होने से प्रभावशाली बन पड़ी है। इस तरह साकेत भाव एवं रसों का से परिपूर्ण सरस काव्य है। यह एक कलात्मक कृति है। स्मृति संचारी एवं उन्माद संचारी भाव का सुंदर चित्रण हुआ है। भाषा में सर्वत्र भावानुकूलता एवं चित्रोपमता है। इसमें ध्वन्यर्थ व्यंजना नामक अलंकार की योजना करके कतिपय नवीन पाश्चात्य अलंकारों को भी स्थान दिया गया है। यह नवयुग का महाकाव्य है। कवि ने इसमें नैतिकता एवं आदर्शवादिता से परिपुष्ट हमारे सांस्कृतिक जीवन के निरूपण में अपना अद्भुत कौशल दिखलाया है। यह भाग यहीं पर समाप्त होता है।